Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
और साथ ही इसके अंग है, अर्थात ये भी पूरा फैला स्वप्न और जागृत में कोई अंतर नहीं, जहां वो ये बतलाएंगे कि ये हमारी कल्पना है कि ये जाग रहे हैं और वो स्वप्न देख रहे हैं। ये कल्पना मात्र है, किसी भी तरह से जब हम विचार करेंगे तो बस फर्क इतना ही है कि जागृत में हम बाहरमुखी हैं और स्वप्न में हम अंतर्मुखी हैं। दोनों में और फर्क कोई नहीं। भोग भी दोनों में है, वहां पर स्थूल भोग है, यहां पर प्रव्यक्त भोग सूक्ष्म भोग है। बाहर मुखी जब होते हैं तो हमें लगता है कि भोग अलग है और भोगता अलग है। जिस चीज का हम भोग कर रहे हैं वो अलग है और हम अलग हैं। स्वप्न में भी देखने में ऐसा ही लगेगा कि अगर हम कुछ खाना खा रहे हैं तो लगेगा कि मैं कुछ खा रहा हूं, लेकिन जब वास्तविकता में जाएंगे तो स्वप्न में कहीं कोई दूसरी चीज तो है नहीं। स्वप्न में तो आपकी अपनी चेतना का ही विस्तार है। वो खाना भी चेतन ही बना हुआ है, खाने वाला भी चेतन ही है। चेतन ने ही आकार धारण किया हुआ है, मनुष्य का भी और खाने का भी, खिलाने वाले का भी। अगर कोई खिला भी रहा है, कुछ खा भी रहे हो और हम खा रहे हैं, तो तीनों के तीनों रूप चेतन ने ही धारण किए हुए हैं। सचमुच में बाहर से कुछ नहीं आया हुआ, वहां तो केवल चेतन इसी आत्मा का ही तो विस्तार है ना। वही खाने वाला बना हुआ है, वही खिलाने वाला बना हुआ है, वही खाना भी बना हुआ है। तो ऐसा ये चिंतन है, जितना भी इसको गंभीरता से सोचते चले जाएंगे उतनी ही ये बात समझ में आती चली जाएगी कि ये वहां पर दूसरा कोई नहीं होता। और बाद में वो ये बात बताएंगे कि ये जो जागृत में भी हम कर रहे हैं, इसमें अपने से अलग कुछ भी मान लेना ये भूल ही है, वास्तविकता नहीं। तो वास्तविकता अर्थात इस बात को जरा समझ पाना थोड़ा कठिन है, उसी के लिए आगे कारिकाएं हैं। कारिकाओं का मतलब ये जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं, श्रुतियां पढ़ रहे हैं, ये कुल 12 हैं, लेकिन इनको समझाने के लिए 215 श्लोक हैं 12 के लिए, जिसमें एक एक का विस्तार किया गया है, वो उनको समझा देते हैं। यहां तो हम पाठ इसलिए कर रहे हैं कि एक बार उपनिषद का पाठ पूरा हो गया फिर इसकी व्याख्या है, किसी भी मंत्र को लेके हम करते रहें। तो यहां स्वप्न को उन्होंने द्वितीय पाद कहा। यहां पर ये भी बात ध्यान में रखने की है कि स्वप्न को जैसे हम जितनी देर स्वप्न देख रहे होते हैं उतनी देर कोई भी इसको ये नहीं मानता कि ये झूठा है, ऐसे ही लगता है जैसे जागृत में आप कर रहे हैं। जागृत में जितनी चीजें सत्य लगती हैं हमें कि मैं जा रहा हूं, ये मिल रहा है, वो हो रहा है, ऐसे ही जितनी देर तक हम स्वप्न को देखते हैं तब तक ये नहीं लगता कि ये झूठ है। वो तो जब जाग गए तो फिर लगता है कि कुछ भी नहीं था, झूठ ही। तो जैसे स्वप्न से जागने पर कुछ भी नहीं रहता, ऐसे ही जागृत का जब हम सो जाते हैं तो जागृत वाला भी कुछ नहीं रहता। विलय दोनों का ही है, दोनों ही खत्म होते हैं। स्वप्न जागने पर खत्म हो जाएगा और जागृत में जो कर रहे हो ये सोने पर खत्म हो जाएगा। रहना दोनों में नहीं है, असलियत दोनों की कुछ नहीं है। और दोनों के दोनों रोज ही हमारे सामने भी आते हैं और दोनों मिटते भी। फिर इसमें से एक को अधिक महत्व दे लेना और दूसरे को ना देना, ये शास्त्र को मंजूर नहीं है। यहां यही इसको द्वितीय पाद अर्थात इसके माध्यम से हमें इसको सोचना होगा, स्वप्न के माध्यम से। आगे 34 पृष्ठ पर पांचवा मंत्र है, इसमें सुषुप्ति का वर्णन होगा। यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते
न कंचन कामम कामयते
न कंचन स्वप्नम पश्यति
न कंचन स्वप्नम पश्यति
तत् सुषुप्तम
तत् सुषुप्तम
सुषुप्त
स्थान
एकीभूतः
एकीभूतः प्रज्ञान घन एव आनंदमयो
हे आनंद भुक् चेतो मुखः प्राज्ञ
तृतीय पादः।
अब इसमें सुषुप्ति का वर्णन किया गया है। वो ये कह रहे हैं जिस अवस्था में सोया हुआ पुरुष किसी भोग की इच्छा नहीं करता, यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते, सोया हुआ किसी भोग की भी इच्छा नहीं करता और ना ही कोई स्वप्न देखता है, ना कंचन स्वप्नम पश्यति, ना तो भोग की इच्छा है और ना ही वो स्वप्न देख रहा है, उस समय क्या है, तत् सुषुप्तम, तो उसको सुषुप्ति कहते हैं। अब सुषुप्ति कैसी है, सुषुप्त स्थान एकीभूता प्रज्ञान घन, सुषुप्ति में सब एक हो जाता है। सब एक हो जाने का अर्थ केवल इतना ही है कि जहां भी कहीं देखो एक जहां कहीं भी हो जाएगा, एकत्व जहां कहीं भी हो जाएगा, वहां बुद्धि काम नहीं करती। बहुत ज्यादा अंधकार में भी कुछ नहीं दिखलाई देता तो बहुत ज्यादा रोशनी में भी कुछ नहीं दिखलाई देता, इसलिए ये एक कल्पना जैसी है कि वो रोशनी है और ये अंधकार है। वास्तविकता दोनों की बराबर की है। अगर एकदम देखो गीता के 11वें अध्याय में जब वो बतलाया कि जैसे हजारों सूर्य इकट्ठे निकल आए आकाश पर, ऐसा दिव्य स्वरूप देखा तो अर्जुन को सब कुछ दिखना बंद हो गया। हमारा अपना भी अनुभव है कि रोशनी बहुत तेज हो, फर्ज करो नीचे 1000 चीजें पड़ी हैं और अलग अलग चीजें हैं 1000, लेकिन रोशनी बहुत तेज हो अगर तो आप एक चीज भी नजर नहीं आएगी आपको, तो उसको प्रज्ञान घन अर्थात अब प्रज्ञा अलग अलग चीजों को नहीं देख रही, अब बुद्धि हमारी अलग अलग चीजों को नहीं देख रही, प्रज्ञान घन बीज को कहते हैं। ऐसा मान लो जैसे बीज होता है, एक बीज के अंदर ही सब कुछ है, बीज के अंदर पूरा पेड़ है, उस पेड़ की जड़ें, उस पेड़ के कांटे, उस पेड़ के फूल, उस पेड़ की तना, उस पेड़ की पत्तियां, सब बीज में समाई हुई, लेकिन बीज जो आप देख सकते हैं लेकिन बाकी वो पत्तियां आप नहीं देखें। तो बीज क्या है, बीज को आप कह सकते हैं फैलाव का, उसको हम पुष्प पुत्र का घन रूप कह सकते हैं। घन रूप का मतलब होता है जहां वो अलग अलग दिखलाई नहीं देते। जब प्रज्ञान घन शब्द कहेंगे तो उसका अर्थ एक ही भूत का मतलब वहां सब एक हो जाता है, इसका अर्थ खत्म हो जाना नहीं है, क्योंकि जब सुषुप्ति से उठेंगे आप फिर संसार नजर आएगा। जब आप सो गए तो उस समय भाई बहन मैं हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए, कोई भी नजर नहीं आया। ये बात दूसरी है कि उस समय हम अज्ञान की अवस्था में हैं, अंधकार में भी सब एक हो जाते हैं और बहुत रोशनी में भी सब एक हो जाते हैं। जब ज्ञान पूरा होता है तो तब भी द्वैत नहीं रहता, और जब अज्ञान है तो अज्ञान में तो अलग अलग चीजें दिखलाई देंगी, लेकिन अंधेरे में भ्रांति में भ्रम में चीजें अलग दिखलाई नहीं देती, ऐसा ये यहां पर बतला रहे हैं आपको। तो इस सुषुप्ति में क्या हुआ, एक ही भूता प्रज्ञान घन, सब कुछ एक हो जाता है इसमें, और एव आनंद में हो ही आनंद भूक, इसमें आनंद का भोग करता है, जैसे पहले में बाह्य विषयों का भोग करता है, स्वपन में अंतरिक आंतरिक विषयों का, अपने आप ही बनाए हुए विषयों का भोग करता है और फिर सुषुप्ति में आनंद का भोग करता है। यहां आनंद भूख कहा इसको, और यहां इसकी अब 19 मुख नहीं बतलाए, यहां चेतोमुखा का मतलब केवल चेतना ही रह जाती है और कुछ नहीं रह जाता। चेतना का मतलब आत्मा ही जागृत रह जाता है, बाकी सब एक हो जाता है। और वो जो सुख मिला हमें, सुख कैसे पता लगा? क्योंकि वो चेतना के माध्यम से। अगर चेतना भी न रहती तो फिर उस सुख का भोग भी नहीं होना था। ये यहां पर उन्होंने सुषुप्ति का वर्णन किया। कोई ये तीनों ही अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, आज के मनोविज्ञान का बहुत बड़ा विषय है। आज के जितने साइकोलॉजिस्ट हैं, जितनी रिसर्च हो रही है कि नींद क्या चीज है, नींद कैसे आती है, नींद के ना आने से क्या क्या बीमारियां हैं, और क्या क्या है जो नींद आने से बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाती, इसलिए बहुत सारी दवाइयां तो नींद लाने की ही हैं। वो नींद में ही सारा प्रकृति अपना काम करती है और व्यक्ति स्वस्थ भी हो जाता है। तो इन पूरे की व्याख्या बहुत बारीकी से इस उपनिषद में की गई। थोड़ा सा इसको समझना इसीलिए कठिन है कि इसमें जो शब्द हैं पारिभाषिक, उनसे परिचित हो। सुने तो हमने कई बार, ऐसा नहीं है कि आज तक वो शब्द ना सुने। जहां वेदांत का चिंतन होता रहा हो वहां वो शब्द कई बार दोहराए गए, लेकिन क्योंकि हम कोई घर बार छोड़ के साधना में नहीं लगे हुए सारे कि इन शब्दों को ही याद रखें, तो वो शब्द भूल जाते हैं, इसलिए समझ में कम आता है कि ये क्या है। बुद्धि कहेगी कि ठीक है बात ये, क्योंकि जीवन जो है हमारा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीन भागों में बटा हुआ है। लेकिन इसमें हम केवल जागृत से ही परिचित हैं, दो छूटे हुए हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, सुषुप्ति की तरफ और स्वप्न की तरफ। तो जीवन की समग्रता के लिए, जीवन को पूरा जीने के लिए, तो जब तक हमें उन दोनों का भी पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक दुखी रहें। इस उपनिषद का यही कहना है, क्योंकि आप जीवन के 1/3 हिस्से को ही जीवन समझते हो, इसलिए आप पूरी तरह से जी नहीं सकते। अगर आप इनको ठीक से समझो तो जीवन की समग्रता है, जीवन को पूरी तरह से जी पाएंगे, नहीं तो 1/3 ही रह जाएगा। ये बात उन्होंने यहां अब तृतीय पाद में आपको ये बतलाया कि चेतना ही इसका एकमात्र मुख है, अर्थात चेतन के अतिरिक्त और कोई इसमें नहीं रहता, बाकी सब प्रज्ञान घना। अब 36 पेज पर सबसे नीचे छठी ऋचा, छठा मंत्र, एष योनि सर्वस्य प्रभवाप्ययौ ही भूतानाम। अब इस छठी ऋचा में, छठे मंत्र में वो ये बतलाते हैं कि ये ही सबका ईश्वर है। कौन? वो जिसको अभी चेतोमुख कहा उन्होंने, यही सबका ईश्वर है। ये सर्वज्ञ है, ये अंतर्यामी है, और ये समस्त जीवों की उत्पत्ति, लय और उनके स्थिति का कारण, अर्थात सारा कुछ जो कुछ भी है वो इसी में, जो सुषुप्ति में भी जाग रहा है। सुषुप्ति में भी जो चेतोन्मुख शब्द कहा, अर्थात आत्मा। तो जैसे हमारा सोना, जागना, स्वप्न देखना, जागने का मतलब है उत्पत्ति, स्वप्न का मतलब है स्थिति, सो जाने का मतलब है विलय। हमारा हर रोज उत्पत्ति, विलय और जागरण होता है। इसका अर्थ ये है कि हमारी उत्पत्ति, हमारी स्थिति और हमारा विलय जिस आत्मा में होता है, वस्तुतः वही आत्मा इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और विलय का स्थान है, वही अधिष्ठान है, ये बात ये इसमें समझाएंगे। अभी उन्होंने केवल सूत्र मात्र से, केवल हमने कुछ शब्दों में ये बात कह दी कि इसमें क्या समझाने जा रहे हैं। तो ये इसका छठा मंत्र है। अब हम सातवें मंत्र को देखें। सातवां मंत्र 53 पेज पर, 53 नंबर पेज पर। और ये जो ऋचा है, ये जो मंत्र है, ये बहुत बार दोहराया गया है। वेदांत के जितने भी चिंतक हैं, ये उन सबको कंठस्थ होता है ये लगभग, क्योंकि इसी को ले, इसमें पूरे का पूरा ब्रह्म का स्वरूप, जीव का स्वरूप, संसार का, विश्व का, जीव जगत, जगदीश्वर, सभी इसी में ही आ जाते हैं। एक ही श्रुति में की आप समझ लो कि ये सार है सभी हमारे उपनिषदों का। तो इसमें वो ये कह रहे हैं, न अंतः प्रज्ञम
न बहिष्प्रज्ञम
नो भयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम
अलक्षणम
अचिंत्यम
अव्यपदेशयम
एकात्म
प्रत्यसार
प्रपंचोपशमम
शांतम
शिवम
अद्वैतम
चतुर्थम
मन्यन्ते
स आत्मा
सविज्ञेय।
तो इसमें पूरा वेदांत कह ले आप उसको, उपनिषदों का सार कह ले, कि वो आत्मा या वो ब्रह्म या वो ओंकार जिसकी वो बात कह रहे थे, तीन स्थितियां वो पहले बतला चुके। एक वो स्थिति है जिसमें हमारी प्रज्ञा बाहर के विषयों को अपना विषय बनाती है, विषय करती है। दूसरी वो है जो अंतः प्रज्ञा, अंदर अपने अंदर ही वो स्वपन का। और तीसरी वो थी जिसको उन्होंने चेत भूक कहा। अब आत्मा स्वयं में कैसे है वो बता रहे हैं यहां पर, कि ये जो त्रि अवस्था को ऐसा मानते हैं विवेकी जन, त्रिय को ऐसा मानते हैं कि वे ना अंतः प्रज्ञा है, ना बहिष् प्रज्ञा है, ना उभयतो, दोनों ही बाहर अंदर, इन दोनों के बीच के अंतर बाहर दोनों ही नहीं है, प्रज्ञ है और ना ही प्रज्ञान घन है, ना ही अप्रज्ञ है, बल्कि क्या है वो, अदृष्ट है जो दिखलाई ना दे, अव्यवहार्य है जिससे व्यवहार भी ना किया जा सके, अग्राह्य है जिसको ग्रहण हम ना कर सके न कर्म इंद्रियों से न ज्ञान इंद्रियों से, अलक्षणम उसका लक्षण भी कोई नहीं है, अचिंत्य उसका चिंतन भी नहीं हो सकता, अव्यपदेशेय उसका उपदेश भी नहीं किया जा सकता। क्या है वो, एक आत्म प्रत्यासार है, प्रपंच का उपशम है, उसी को ही शांत भी कहते हैं, शिव भी कहते हैं, अद्वैत भी कहते हैं, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही जानने योग्य है। ये निष्कर्ष रूप से उन्होंने एक बात कह दी, क्योंकि ये जो श्रुतियां हैं, जैसे इस एक ही श्रुति को लेकर चिंतन करते रहे, न अंतः प्रज्ञम कि इसका क्या, न बाहिष प्रज्ञम, न उभयता प्रज्ञम, न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञम, न अप्रज्ञम, ये सारा निषेध किया गया कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और फिर है क्या, अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम, ये उसका नेगेटिव और पॉजिटिव, साकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से ही उस तुरीय तत्व का, उस ब्रह्म का, उस आत्मा का निरूपण किया गया। और वो ये कह रहे हैं कि यही वो है जो जानने लायक है, इसी को ही जानकर व्यक्ति परम पद को प्राप्त होता है। जिसने इसको नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना। कोई इसके अतिरिक्त तो कुछ भी जान लो वो केवल एक भ्रम रह जाएगा, एक भ्रांति रह जाएगी, वो वास्तविकता नहीं। ये बात वेदांतियों का ऐसा मत है, इस बात को सभी मानते हो ऐसी बात नहीं है। जिन बातों को वेदांत में महावाक्य माना गया इनको भक्ति के आचार्य महावाक्य नहीं मानते। रामानुचार्य इनको महावाक्य नहीं मानते, वल्लभाचार्य जी इनको महावाक्य नहीं मानते, मध्वाचार्य जी तो खैर इनको स्वीकार करते ही नहीं है, वो द्वैतवादी। लेकिन जो वेदांत के चिंतन वाले हैं वो उनके लिए ये महावाक्य है। और ये श्रुति जैसे कर रहे हैं नाम का प्रज्ञम न बहिष् प्रज्ञम, ये सही स्वरूप है ब्रह्म का या आत्मा का या उस परम तत्व का जिसको जानना चाहिए। भक्ति में इन्हीं की व्याख्या दूसरे ढंग से होगी। भक्ति वाले भी इनकी व्याख्या करते हैं, वो इसका कहेंगे कि स्वाय उसके और कहीं ध्यान ही न जाए, आपका आपका ध्यान न बाहर जाए न इधर जाए, उसी पे टिका रहे, वो इस तरह की इसकी व्याख्या करेंगे। ये भी व्याख्या हम कर लेंगे इसकी, लेकिन अभी इसको जिस उपनिषद का शंकर भाष्य की दृष्टि से देख रहे हो आप, ये वैसा ही है। अब उसके बाद जरा आठवां मंत्र देख लें। आठवां मंत्र 68 पेज पे, 68 सोयम आत्माध्यक्ष,
सोयम आत्माध्यक्ष,
ओंकारो अधिमात्रम,
ओंकारो अधिमात्रम,
पादा मात्रा,
पादा मात्रा,
मात्रश्च पादा,
मात्रश्च पादा,
अकार उकार मकार इति,
अकार उकार मकार इति।
यहां वो ये कह रहे हैं कि वह ये आत्मा अक्षर दृष्टि से ओंकार है, वह मात्राओं को विषय करके स्थित है। पाद ही मात्रा है और मात्रा ही पाद है, वे मात्रा आकार उकार और मकार। जैसे पहले तीन पाद कहा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, अब यहां कह रहे हैं कि आकार उकार मकार ये वही है। आकार जागृत है, मकार ये है, और ये इन तीनों को ही तीन मात्राओं को तीन स्थितियों से मिला रहे हैं कि जो आकार उकार और मकार है वही जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत को लेंगे तो आकार की व्याख्या करेंगे, स्वप्न को लेंगे तो उकार की व्याख्या करेंगे, और सुषुप्ति को लेंगे तो मकार की व्याख्या करें। ओम के अंदर ही इन तीनों की स्थिति को, ये कल्पित है, ये बात आप ध्यान में रख लेना कि बात को तत्व को समझने के लिए इनकी कल्पना की गई। आगे नम श्रुति को देखें, जागृत स्थानो वैश्वानरो अकार,
जागृत स्थानो वैश्वानरो अकार,
प्रथमा मात्राप्ते,
प्रथम मात्राप्ते,
आदिमत्वात्,
आदिमत्वात्,
आप्नोति हा वही,
आप्नोति
हा वही, सर्वान् कामान् आदिश्च,
सर्वान् कामान् आदिश्च,
भवति या एवं वेद,
भवति या एवं वेद।
जिसका जागृत स्थान है वह वैश्वानर व्याप्ति और आदि मत्व के कारण ओंकार की पहली मात्रा आकार। जो उपासक इस प्रकार जानता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और महापुरुषों में आदि या प्रधान हो जाता है। यहां पर इसी की व्याख्या को हम फिर और विस्तार से करेंगे, लेकिन अभी आप आगे का मंत्रों को देखें। ये अभी हमने जो पढ़ा ये नौवां मंत्र है, अब दसवां मंत्र को देखें। हाँ, नेक्स्ट पेज पर ही है, 70 पेज पर दसवां मंत्र। स्वप्न स्थान तेजस उकारो,
स्वप्न स्थान तेजस उकारो,
द्वितीय मात्रोत्कर्ष,
द्वितीय मात्रोत्कर्ष,
दुभयत्वात्,
दुभयत्वात्,
उत्कर्षति हा वै,
उत्कर्षति हा वै,
ज्ञान संतितम,
ज्ञान संततिं,
समानश्च भवति,
समानश्च भवति,
नास्य ब्रह्म वित्कुले,
नास्य ब्रह्म वित्कुले,
भवति,
भवति,
या एव वेद,
या एव वेद।
तो स्वपन जिसका स्थान है वह तेजस उत्कर्ष तथा मध्य वाक्य तत्व के कारण ओंकार की द्वितीय मात्रा उकार है। जो उपासक ऐसा जानता है वह अपनी ज्ञान संतान का उत्कर्ष करता है, सबके प्रति समान होता है और उसके वंश में कोई ब्रह्म ज्ञानहीन पुरुष नहीं होता। ये उनका दसवां मंत्र है। अब दसवें मंत्र के बाद एकादश और द्वादश मंत्र का पाठ करें तो फिर हम पूरा हो गए। सुषुप्त स्थान प्रज्ञो प्राज्ञो मकार तृतीय मात्रा
मकार तृतीय मात्रा
मितरेपि
मितरेपि
तेरवामि
तेरवामि
नोति हावा
नोति हावा
इदं सर्वं
इदं सर्वं
पीतश्च
पीतश्च
भवति
भवति
या एव वेद
या एव वेद।
सुषुप्ति जिसका स्थान है वह प्राज्ञ मान और लय के कारण ओंकार की तीसरी मात्रा मकार है। जो उपासक ऐसा जानता है वह इस संपूर्ण जगत का मान प्रमाण कर लेता है और उसका लय स्थान हो जाता है। अंतम मंत्र को देखें, ये 76 पर है। अमात्रस चतुर्थो व्यवहार्य
व्यवहार्य
प्रपंचोपशम
प्रपंचोपशम
शिवोद्वैत
शिवोद्वैत
एवंकार
एवंकार
आत्मैव
आत्मैव
संविश्यत
संविश्यत
आत्मना आत्मनम
आत्मना आत्मनम
या एवं वेद
या एवं वेद।
मात्रा रहित ओंकार तृतीय आत्मा ही है, वह अव्यवहार्य प्रपंचोपशम शिव और अद्वैत है। इस प्रकार ओंकार आत्मा ही है, जो उसे इस प्रकार जानता है वह स्वतः अपने आत्मा में ही प्रवेश कर जाता है। ओम शांति। ये इसके मंत्रों का पाठ हो गया। अब इनका रोज कुछ पाठ कर पाए या न कर पाए, पूरा हुआ, इसकी अब व्याख्या करते हैं। ओम।